नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी विशेष प्रस्तुति जिसका नाम है बीड चेन सीरीज। पिछले लगभग 2 महीने से दोस्तों हम हर दिन आपके साथ मिलते हैं और बातचीत करते हैं, और इस बातचीत के दौरान आपसे बातचीत करने का मौका मुझे मिलता है और आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारी बातचीत आप ही हमारे साथ करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। ये जो बदलाव का दौर है, इस बदलाव के दौर में हम सभी अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, और इसमें अगर हमें कुछ मोटिवेशन की जरूरत चाहिए, कुछ गाइडेंस की जरूरत चाहिए, कुछ इमोशनल सपोर्ट या स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है, तो वो मुहैया कराने के लिए ब्रह्मा कुमारी से विशेष प्रयास कर रहे हैं। हर दिन हमारे साथ कार्यक्रम में एक ऐसे मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं जिन्होंने मेडिटेशन को अपने लाइफ में लाइफ लॉन्ग अप्लाई किया है और अनेकों वर्षों तक इसकी साधना की है, स्पिरिचुअलिटी को इनकल्केट किया है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं और उनके साथ हम बातचीत करते हैं और उनसे हमारे प्रश्नों का समाधान करवाने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे सीधे इस प्रोग्राम पे लाइव। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पर या यूट्यूब पर जहां पर भी आप जुड़े हैं वहां पर अपने सवाल टाइप करके भेज सकते हैं और इन सवालों को हम आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन से पूछेंगे और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी गोदावरी दीदी जी हैं जो हमारे साथ मूलतः मुंबई से जुड़े हुए हैं, और दीदी जी अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाओं को आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान देते रहे हैं और हजारों लोगों ने उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज हमारा सौभाग्य है कि दीदी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं दीदी का स्वागत करना चाहता हूं सभी लोगों की तरफ से। दीदी, वेलकम टू द शो, स्वागत है आपका। दीदी, मैं बातचीत को शुरू करना चाहता हूं कुछ प्रश्नों के साथ जो हमारे दोस्तों ने पूछे हैं। एक पहला प्रश्न हमारे साथ यूट्यूब से संजना जी पूछते हैं। दीदी, वो कहते हैं कि निर्भय होकर जीवन को कैसे जिया जाए, स्पेशली अगर आप एक लेडी हैं, अगर आप एक महिला हैं, तो ऐसे में आप निर्भय होकर जीवन को कैसे जी सकते हैं, ऐसे संजना पूछते हैं।
अच्छा, मैं कहती हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यूँ देखा जाए तो हमारा जो भारत देश है ना, वो आदिकाल से ही सुसंस्कृत देश है, आत्मनिर्भर देश है, स्वावलंबी है। अभी समय के हिसाब से थोड़े परावलंबी उठते हैं, तो सोचना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। अभी हम लोग क्या है, एक्चुअली बहुत ही बाहर में चले गए हैं। बहिर्मुखता में जाने के कारण सभी वो आत्मनिर्भर अस्त व्यस्त हो गए हैं, सभी भयभीत हो गए हैं। एक्चुअली भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अपने पैरों पर हरे को खड़ा रहना चाहिए।
जी,
वर्तमान समय की परिस्थितियों को देख करके घर में जितने 10 लोग होते हैं, 10 को 10 ही लोगों को कमाने की आवश्यकता रहती है। क्यों कि लोगों को मोह शोक बहुत बढ़ गया है और लोगों की आवश्यकता बहुत है। तो मैं तो कहती हूँ कि जो हमारे पीएम मोदी साहब ने जो कहा है आत्मनिर्भर का, जो इतना नारा लगाया है या कहते अभियान निकालो, ये बात राइट है कि हरेक को अपनी देश की संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए कि ये हमारी संस्कृति है। आत्मनिर्भर रहने का, खुद के ऊपर रहने का, औरों के ऊपर डिपेंड ज्यादा नहीं रहने का। वर्तमान समय क्या है कि लोग औरों के ऊपर ज्यादा नजर करते हैं, खुद के ऊपर कम करते हैं। तो इसे आध्यात्मिकता में क्या कहते हैं कि औरों को जब भी आप कहते हो ना, तो उसके तरफ एक अंगुली जाती है और आपके ऊपर चार है। तो पहले आप अपने को देखो, आपको इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सभी दुनिया में आदत से लेकर जो सब कुछ होता आया है और अभी भी हो रहा है, तो ठीक हो जाएगा। हमारी मन अगर प्रबल होगा, मजबूत होगा, हमारे भारतवासी सभी मिलकर के अगर समझो एकता के सूत्र में आएंगे, तो सभी ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ऐसे मौके पर कुछ ये आध्यात्मिकता भी अपने जीवन में रखनी चाहिए, कुछ सहन शक्ति भी रखनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि सारी दुनिया इस टाइम पर बहुत ही डर में है, भय में है। सभी को शक्ति चाहिए, गीत गाते थे शक्ति देना में दाता, हमारा मन कमजोर होना, हमारा विश्वास कमजोर होना। अरे गीत नहीं गाओ, अभी हमारा मन कमजोर हो ना तो अपने हाथ में है, मन हमारा दिल अपने हाथ में है, हमी कमजोर क्यों बने। और परमात्मा को कहा जाता है सर्वशक्तिमान है वो, तो थोड़ा उनकी तरफ भी जाना चाहिए और मन को मजबूती में लाना चाहिए। इतना ये नहीं रखना चाहिए, भयभीत होकर के क्या होता है कि और भी लोग एक को भयभीत देख करके दूसरे चार लोग भी भयभीत हो जाते हैं। हमारा तो ख्याल है कि हमारी आदि संस्कृति का ये है, आदि काल से हम आत्मनिर्भर ही रहे, स्वावलंबी रहे हैं, हमको पराये लंबी रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि अगर हम डरते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, और हम ये समझ के चलें कि ये संसार में हम हर कोई साथ में है तो फिर तो ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ दीदी, जो हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, उसमें ये जो अभी बदलाव का दौर आपने कहा, इसमें आत्मनिर्भर होने की बात आपने कही, और आपने ये भी कहा कि हमें थोड़ा ये रहना चाहिए कि हम मेडिटेशन वगैरह स्पिरिचुअलिटी वगैरह प्रैक्टिस करें, ऐसा आप कह रहे थे। लीजा जी हमारे साथ जुड़े हैं दीदी, और वो प्रश्न पूछते हैं दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम कैसे करें। हमें ये बताया जाता है कि हम दूसरों से कम उम्मीद करें, ज्यादा किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम कैसे कर सकते हैं, कैसे कम रखें दूसरों से एक्सपेक्टेशन, ऐसा पूछते हैं।
वो उसका कारण क्या है कि जितना हम ज्यादा अपेक्षा रखते हैं ना, उतनी अपेक्षाएं बढ़ती है, थोड़ी कम करनी चाहिए हर एक को। अभी अगर समझो कोई नारी है, वो औरों को देखती रहती कि इसके घर में फर्नीचर कितने लाख रुपए का है, तो मेरे घर में भी लाख रुपए चाहिए, और तो खुद के घर का देखना चाहिए कि मेरे घर में कितनी कमाई है, कितने कैसे पति कमाता है, कितना उसको तकलीफ होती है, तो वो थोड़ा सोचने की जरूरत है। आजकल मैंने देखा है कि घर के व्यक्तियां इतनी समझते नहीं है कोई बात में, और खाली बढ़ाते ही जा रहे हैं, और बाहर में किसी को देखते हैं कि ये इतना खर्च करता है तो मुझे भी इतने खर्च के लिए चाहिए। हरेक को घर के मेंबर को अभी समय इतना नाजुक आ गया है, हर एक मेंबर को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए, परिवार देखना चाहिए, व्यवहार देखना चाहिए, और घर के लोगों को भी देखना चाहिए, एक दो को सपोर्ट करना चाहिए। वो समय है, सिर्फ अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और आज हमारी एक अपेक्षा रही, कल हमारी दूसरी दो गुणी चार गुणी हो जाएगी। जैसे एक के ऊपर ही थोड़ा अटेंशन देना चाहिए कि पूरी हो सकेगी कि नहीं। आज अगर मेरी कमाई, मान लो कि किसी की कमाई मंथली 20,000 रुपया है और उसके घर का खर्चा है 30,000 रुपया, तो नेचुरल है घर में खिंचातानी होगी। तो 20,000 जो कमाते हैं उनको खर्च में तो समझती हूँ कि 12 से 14,000-15,000 रखना चाहिए खर्चा, उसे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, तो वही वो परिवार सुखी बन सकता है। और औरों की नकल में नहीं जाना चाहिए, हमेशा कहा जाता है कि औरों की नकल में जाने से पहले अपनी अक्ल को यूज करो, कि जितनी चादर होती है ना उतना ही पैर खींचना अच्छा है। अभी समय बड़ा तो बहुत ही नाजुक चल रहा है, ऐसे समय पर अगर हम सभी इतना ही वो हंगामा करेंगे तो कैसे होगा, ये सोचने की जरूरत है। मेरा तो ख्याल है कि अपेक्षाओं को थोड़ा कम करना चाहिए, अपने मन के अंदर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए, ये चाहिए तो ये चाहिए ही बनते हैं।
जी ये जो बात आप कह रहे थे दीदी, ऐसा बहुत बार होता है, हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ चीजें हमको चाहिए तो हम यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ ये चीज मेरे को चाहिए, इसके बिना काम नहीं हो सकता, ऐसे भी हम बहुत बार सोचते हैं। कोशिश जो आपने कही वो बहुत अच्छी है कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करें। अगला प्रश्न हमारे साथ अशोक नारंग जी पूछते हैं, और अशोक जी का प्रश्न है, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं और पूछते हैं, मन को विपरीत परिस्थिति में कैसे शांत रखें। बहुत बार ऐसे होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हमें जैसे चाहिए वैसे फेवरेबल सिचुएशंस नहीं होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में मन को शांत कैसे रखा जाए, ये प्रश्न पूछते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है
जी,
क्योंकि यही तो बड़ा ही है ना, जब सब कुछ अनुकूल ही होता है तो सब कुछ अनुकूलता रहती है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमको अनुकूलता रखनी चाहिए, यही तो हमारी पढ़ाई है, ये तो लिखा ही है, बाकी क्या है। आजकल किसी को मुझे ग्रेजुएशन तो बहुत रह लेते हैं, परंतु समय आए घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, व्यवहार में नहीं आता है। तो अपना ये जो हम जो ज्ञान सुनते हैं करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में ये ज्ञान आना चाहिए, कि आध्यात्मिकता जो है ना वो व्यवहारिक जीवन में होनी चाहिए, सिर्फ बोलने मात्र नहीं है। हमने देखा है कि बहुत लोग देखो क्या सत्संग करते हैं, क्या मंदिरों में जाते हैं, क्या क्या करते, कितना पाठ पढ़न, और किसको मुझे डबल ग्रेजुएट है, ये PhD डिग्री मिली है, इनको ये है वो है, लेकिन फिर जब खुद के ऊपर जरा भी परिस्थिति प्रतिकूल आती है तो घबरा जाते हैं। ऐसे मौके पर ही हमारे मन को शांत और स्वस्थ रखना चाहिए, माइंड एकदम स्वस्थ रखो, थोड़ा परिस्थितियां आएगी, आज आई है कल चली भी जाएगी, अपने मन को अस्वस्थ नहीं करने का है, चलायमान नहीं करने का, थोड़ा अपने आप के लिए भी सोचना चाहिए कि मैं इतना कोई भी बात में इतना मुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। अरे मनुष्य की जिंदगी है, देखो मनुष्य जन्म लेता है और मरता है, उसके बीच में लाइफ कितनी छोटी है, और छोटी लाइफ में इतना मोजने की जरूरत ही नहीं है, और भी हमको तो ये जिंदगी मिली है मौज करने के लिए, तो सोचना चाहिए कि मुझे तो मौज करके बिताने का है जिंदगी। परिस्थितियां तो आएगी जाएगी, कोई भी परिस्थितियां, थोड़ा हम तो यही कहती है सभी को कि शांति का महामंत्र याद रखो, थोड़ा अपने आप को ओम शांति कहकर के थोड़ा शांति रखो, अगर शांति रखी तो आपको देख करके औरों को भी शांति मिलेगी, परंतु आप घबरा नहीं जाओ, डर नहीं जाओ, और सही तो यही होता है कि विपरीत समय पर ही हमको स्वस्थ माइंड रहना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे बड़े जो हम जिसको दादी माँ कहते थे, उसका एक बार साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छा सभी इंटरव्यू लिया, उनको रिसर्च किया, 100 साल की एज में भी स्टेबल माइंड, ये कितनी बड़ी बात है। तो हम क्या, हम तो भी इतने कोई अशोक भाई की एज में नहीं समझते, कोई बहुत बड़ी एज, अशोक भाई कितने एज के हुआ, उम्र क्या है अशोक भाई की?
मैं समझता कम ही होंगे दीदी, यंग ही हैं, जवान है अभी,
परंतु आप देखो स्टेबल माइंड रखो, ज्यादा हर्जे में नहीं लाओ, परिस्थितियां तो प्रतिकूल, अभी तो दिनों दिन आप देख रहे हो कि चारों ओर परिस्थितियां बदल रही है, और ये दुनिया कहाँ जाके पहुंचेगी कुछ कह नहीं सकते हैं, सभी चिंतित है कल हमारा क्या होगा, और हम लोग सोच रहे कि जो होने वाला सो होगा, हमें क्या सोचने का है, क्योंकि जो आया है उसको जाना तो है ही है, फिर हंसते जाएगा रोते जावे, उनका कर्म है, उनकी बुद्धि में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, थोड़ा शांति से थोड़ा अपने लिए भी विचार करना चाहिए, और कभी भी कोई भी बात में एकदम ही कोई बात आई, ऐसे कोई भी धमाका सुना, कोई सुना तो तुरंत ये भयभीत नहीं हो जाने का है, थोड़ा शांति से खुद को भी सोचने का है कि एक हमेशा दो बातें सामने रखनी चाहिए, एक रीजन दूसरा रीजन, कि अगर मैं ये करूं तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगी। आज कई हताशा में निराशा में उदासीनता में आकर के अपना घात कर देते हैं, उनकी रिजल्ट क्या होती है, तो सोचने का थोड़ी शांति से अपने आप को सोचना है, कि मेरी जिंदगी कितनी छोटी है, मैं अगर चला जाऊंगी या चला जाऊंगा तो आगे पीछे का क्या है, तो क्यों नहीं मेरी लाइफ को थोड़ा अच्छा सुंदर बना करके जाऊं मैं। जो मैं कई हमारे देश के देखो बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद है, कितने अच्छे होकर के गए, आज कईयों को प्रेरणा मिलती है युवाओं को। ऐसे कोई भी ऐसे मान तो महान विचार कहते हैं जो सादा जीवन ऊंच विचार, हमारे अब्दुल कलाम जी उनका ये स्लोगन है कि सादा जीवन ऊंच विचार। अपने विचारों को ऊंचा रखो ना, मान रखो, और इतना डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, मैं कर सकती हूँ
जी जी।
एक बात छोटी थी कि एक भाई के हाथ में एक लालटेन थी जिसका प्रकाश 1 किलोमीटर तक ही जाता था, और उनको जाना था 10 किलोमीटर तक, वहीं खड़ा रह गया। उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिला आध्यात्मिक, बोले क्यों बेटा खड़ा है कब से इधर, बोले जाना है मुझे 10 किलोमीटर और मेरे पास जो टार्च है वो 1 किलोमीटर तक की उसकी लाइट जाती है। बोले कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर तक तो जाती है ना, तो सोचने का क्या है, तो 1 किलोमीटर तक जा, कि वहां तक जाएगा तो और 1 किलोमीटर तक लाइट जाएगी, फिर और जाएगी और जाएगी, ऐसा करते करते 10 किलोमीटर तक चला जाएगा। हिम्मत कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा है, पर हिम्मत का एक कदम हमें भरना पड़ता है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। कहा जाता है कि कभी भी हिम्मत करने वाले का कभी भी वो नाकामयाब नहीं होता है, हिम्मत रखने वाले की हार कभी नहीं होती है। मेरा तो ये ख्याल है कि हिम्मत रख करके बड़े बड़ों ने हमको सिखा के गए हैं, बता के गए हैं, एक कदम आगे बढ़ो कि पीछे सब कुछ ही हो जाएगा, अच्छा ही होगा। और पहले से नेगेटिविटी बुद्धि में नहीं आनी चाहिए, नहीं होगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये होगा तो, ये तोते वाला ज्ञान नहीं रखने का है हमको, तो अपने जीवन में हमें सब खुशियां मनानी है, अच्छा रहना है, मजबूत रहना है, औरों को हम कैसे हम काम आए वो सोचने का है, अपना ही नहीं सोचने का है। मानव जीवन कहते हैं किस लिए है, जियो तो औरों के लिए जियो। अभी ऐसी परिस्थितियां चल रही है दुनिया में, आपने औरों के लिए क्या किया, क्या औरों को आपने कुछ, औरों के लिए कितना पैकेज बनाया, कितना आपने उनके लिए खाना पकाया, कितना उनके लिए बेड बनाया, कितने उसके लिए हॉस्पिटल खोली, क्या सामाजिक सेवाएं भी क्या की आपने। जो परिस्थितियों को देख करके आप डर जाते हो, अगर डॉक्टर होते थे और डर जाते थे तो कोई पेशेंट की आप सेवाएं नहीं कर सकते थे। तो हमारा जीवन, हमारा सामाजिक सेवा के लिए जीवन है, हमेशा सोचना चाहिए कि आई एम ओबीडियंट सर्वेंट हूँ।
जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, कि ये चीजें जो हम करते हैं ये चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होती है हमारे लिए अक्सर, जो हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं और ये सब कुछ। और अगर हम रीजन और रिजल्ट के बारे में आपने जो बात कही वो मुझे बहुत पसंद आई, कि भाई आप करने से पहले सोचो कि रीजन क्यों कर रहे हो, और करने के बाद ये सोचो कि भाई अगर ये मैं कर दूंगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो बहुत ही आसान हो सकता है। अगला प्रश्न हमारे साथ यूट्यूब से प्रयाग जुड़े हैं। प्रयाग जी का प्रश्न है, वो कहते हैं कि दीदी मुझे मेडिटेशन भी करना है और पैसे भी कमाना है। वो कहते हैं कि मुझे मेडिटेशन भी करना है और पैसे भी कमाना है, इन दोनों को मेंटेन करके कैसे चले, पूछते हैं। उनको लगता है कि अगर मेडिटेशन करेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो ये दोनों करने हैं तो कैसे कर सकते हैं ऐसा।
संतुलन रखना ही पड़ता है जीवन में
जी,
संतुलन के बिना तो कोई चीज मिलेगी नहीं दुनिया में। तो वो दोनों ही काम साथ में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कई बार ऑफिस में कई व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं, लिखते भी जाते हैं, उनके बुद्धि में उनके बच्चे भी याद होते हैं, घर भी याद होता है, कुछ काम और करना होता है तो वो भी याद आता है, सब कुछ याद आता है ना। तो उसमें अपने मन का बैलेंस चाहिए, अगर बैलेंस भरो तो दोनों ही कर सकते हैं, और भी मेडिटेशन से तो और भी अच्छे से अच्छी सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमारा मन पहले बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए, स्वस्थ माइंड होना चाहिए, तो काम कर सकते हैं। वरना छोटा भी काम होता है, कोई घबराता है, डरता है, तो वो हाथ में से चीज गिर जाती है तुरंत ही, फिर कहेगा आपको देखा ना तो हमको डर लगा गिर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे क्या है, इंसान हम बने किस लिए है, अब इस संसार में आए किस लिए, अपने आप से पूछो तो सही। और जरूर करना है, सर्विस तो करनी है, साथ में मेडिटेशन। मानव भगवान भी कहता है कि आप कम कार्ड है दिल यार रेस का मतलब है, माना कि लिखा ही है गीता में भी कि आप हाथों से काम करो, सिर्फ मन मेरे तरफ लगा दो बस, और लग सकता है मन। मेडिटेशन का आप कह रहे तो मेडिटेशन से मन लग सकता है, आप मेडिटेशन पूरा पूरा सीख लो। मैं तो कहती हूँ 100% मैं कहती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी बहुत अच्छी तरह से लाइफ चलेगी, और आप बहुत ही अपना संतुलन रख करके दोनों ही काम व्यवस्थित कर पाओगे। और भी आपका जो बॉस होगा या आपका कोई भी ऊपर कोपरी कोई भी होगा ना, खुश हो जाएगा, कह रहे अभी तो आप बहुत काम अच्छा निकल रहे हो। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। हमको तो लगता है कि एकदम ही नारियां भी कितना कितना काम कर रही है आजकल, तो ट्रेने चढ़ा रही है, प्लेन चढ़ा रही है, घर भी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये कोई प्रयास करने के लिए बड़ी बात तो नहीं लग रही है, मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। अगर मेडिटेशन सिद्ध बरोबर सीख रहे हैं तो सर्विस तो और भी जो अभी करें उसे भी दिन 2 गुना रात 4 गुना अच्छी होगी उनसे। मुझे नहीं अभी तो फिर मुझे होंगे।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, मैं समझता हूँ प्रयाग जी को ये बात समझ में आई होगी और वो मानते होंगे कि हाँ मेडिटेशन करने से फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, और मेडिटेशन करते रहने से उल्टा उन्नति ज्यादा होगी। अगला प्रश्न दीदी सुषमा जी हमारे साथ पूछती हैं। सुषमा जी का प्रश्न है कि उनके सास ससुर जो है जहां पर उनका शादी करके जहां पे वो आए हैं वहां पे उनके घर में बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, वो लोग बेइज्जत करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे मुझे डील करना चाहिए जब कोई मुझे बेइज्जत करता है, कुछ ऐसे कहता है जो मेरी बेइज्जती हो, कुछ ऐसे शब्द कहता है, तो मुझे कैसे डील करना चाहिए, पूछते हैं सुषमा।
सुषमा जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि कुछ तो कारण होगा, पहले कारण ढूंढना चाहिए। कारण अब मेरे सामने आता है तो निवारण होता है। अभी घर में जब सभी नाराज है तो कोई तो कारण होगा ना, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है ना, क्या कारण है पहले वो ढूंढना चाहिए, किस लिए नाराज है, कुछ तो होगा ना। आप यहाँ पे तो कोई वो नहीं होगा या ना ऐसे कोई नाराज होगा। आजकल तो और भी लोग कितने, पहले जमाने में खुश होते थे, बहू घर में आती थी तो कहते थे लक्ष्मी आई, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि या तो सामने वाले को कुछ माना, आजकल ये भी हो सकता है कि सभी की नजर प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत होती है, या तो ज्यादा वो चेता होगा, या तो रंग रूप यौवन कुछ कहीं कमी होगी, कुछ भी होगा, मैं ऐसा समझती हूँ, तो ये हो सकता है। तो कारण को अगर ढूंढेंगे तो निवारण सहज ही हो सकता है। अगर वो सभी के बीच में नहीं भी बता सकते हैं तो भले कभी बता सकते हैं, बाकी वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अभी घर में सभी का देखो प्रिय बनना, आज मैं ये कहती हूँ कि हमारे मोदी साहब से भी सीखो, इनको चारों ओर से कितना सभी कई प्रकार के उलझन आ रही है, एक उनके चेहरे पर हमने कभी उलझन नहीं देखी, ये भी एक स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर के बिना कुछ नहीं होता है। हर एक के पास 3 प्रकार की पावर चाहिए, एक सोल पावर, गॉड पावर और विल पावर। अगर ये 3 चीजें हैं तो कामयाब हो जाता है। और सुषमा जी को ये सोचना चाहिए कि किस लिए ये नाराज है, किस लिए ये कर रहे हैं। अगर वो समझ ले फिर अपने आप को थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। जिस पास से जो नाराज होता है उनको आप भरपूर कर दो, आज छोटा बच्चा होता है, घड़ी घड़ी रोता रहता है, घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ मांगता रहता है। क्या मांगता है? उनको बाजार लेके जाओ, उसको लेके दो चीज, तो वो बैठ जाएगा। इसलिए मन को ज्यादा मारने की जरूरत नहीं, बस सुधारने की जरूरत है, मेरा ऐसा ख्याल है। सुषमा जी को कोई बात में वो नहीं करना चाहिए, सभी अच्छे हो जाएंगे
जी।
अगर हम ठीक है ना तो सभी अच्छा हो जाता है, हमें ही बदलने की जरूरत है। हम बदलेंगे पहले घर से ही, चैरिटी बिगन सेट हो, पहले हम अपने से शुरू करना चाहिए। अगर हम ठीक हो जाएंगे, हमारे मन की भावना अच्छी होगी, अगर हमारे मन में ये है कि सभी को मैं सीधा करूं, सभी को ठीक करूं, एक एक को मैं उड़ा देंगे, एक एक को मैं, तो कभी ठीक नहीं होगा। हमारे मन की भावनाएं बड़ी सुंदर होनी चाहिए, मैली नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे से कितना भी कैसा भी कोई भी प्रकार से चैलेंज चलता है, हमारा मन पवित्र है, शुद्ध है ना, तो ऑटोमेटिक वो शुद्धता उनमें भी आ जाती है। अगर हमारे मन में ये होगा कि इनको मैं सीधा करके ही रखूंगी, तो उनके मन में भी वो विचार पहले से आ जाएगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, मैं बता सकती हूँ सुषमा जी को?
जी जी जी।
सुषमा जी, एक क्या है देखो, एक लड़की और माँ, लड़की जवान थी और उनको ससुराल में छोड़ना था, तो माँ के साथ जा रही थी, सजी सजाई थी, वो जा रही थी माँ के साथ। इतने उनका पहले के जमाने में इतने साधन नहीं थे नहीं जाने आने के, अभी तो साइंस के बहुत सारे साधन हो गए, कुछ न कुछ रिक्शा मिलती है, रिक्शा नहीं मिलती है तो कार मिल जाती है, ऊबर मिल जाता है, ऊबर मिल कुछ न कुछ मिल जाता है, पहले जमाने में था नहीं। तो इधर में एक घोड़े वाला भाई गया, तो उसको बोला कि भाई जरा खड़ा रख और मेरी लड़की को, जरा थक जाएगी, जवान है तो सामने गांव में पहुंचा, मैं तो पैदल पैदल चली आएगी। तो वो जाने लगी, तो घोड़े वाला भाई ने कहा मुझे टाइम नहीं, टाइम नो टाइम, नो टाइम करके आगे बढ़ गया। फिर बढ़ गया, फिर बाद में उसको सोच चला, अरे कितनी अच्छी लड़की थी, जवान लड़की थी, इतना सोना चांदी पड़ा था, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं वापस उसके पास जाता हूँ, बोलता हूँ लेके आता हूँ लड़की को। और यहाँ उनको वो विचार आया है, और यहाँ इनकी माँ को भी विचार आया, अच्छा मैं लड़की को नहीं भेजा, अगर वो लूट लेता था तो, उठा के लेके जाता था तो, कुछ करता था तो, वो वापस आया। वापस आकर के वो कहता है कि ओ माजी माजी, आपकी बेटी को बिठा दो, मैं लेके जाता हूँ। बोले जिसने तेरे को बोला है ना, उसने मुझे बता दिया है, अभी तू जा सकता है। तो इसलिए हमारे मन में सभी के प्रति शुभ भावना और बहुत ऊंची भावना रखनी चाहिए, कल्याण की भावना रखनी चाहिए, और गॉड को प्रेयर करना चाहिए कि उनको अब सुमत दो, सभी को अच्छा बनाओ, घर को भी अच्छा बनाओ, सभी अच्छा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमें ही अच्छा सोचने की जरूरत है। आजकल क्या है, तुरंत ही नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, और फिर एक ही विचार आता है, मर जाए तो अच्छा है। ये कोई विचार है? मर तो यूं भी जाएंगे, एक दिन तो जाना ही है ना, मर जाएंगे। तो मौत आए उसके पहले ही क्यों आप उसके मुंह में जा रहे हो? आप जब भी वो मृत्यु आएगा तभी आएगा, उसके पहले क्यों ऐसा सोचते हो? तो अगर किसी की सोच बदलेगी तो आप ही सब कुछ बदल जाएगा। तो हमें अपनी सोच को बदलने की बहुत जरूरत है, इसके लिए चाहिए अपनी विल पावर चाहिए और सोल पावर चाहिए, तभी गॉड पावर आप ही मिल जाएगी
जी।
तो मुझे तो ये ख्याल आता है कि सुषमा जी को घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए क्या कारण है, जो इसका निवारण पहले ढूंढो, तो जरूर अच्छा घर बन जाएगा। एक दिन ये नरक सा जो घर लगता होगा, कल स्वर्ग सा बन जाएगा, उसमें कोई प्रकार की डाउट नहीं है
जी। जैसे आपने कहा, मैं समझता हूँ ये बात सुषमा जी को समझ में आई होगी और आपके एडवाइस का वो पालन करेंगे, और सभी के प्रति शुभ भावना रखना, एवरीवन के लिए जो भी है उनके आसपास, उन सभी के लिए गुड विशेज रखना, वो समझेंगे ऐसा मैं समझता हूँ। सूर्य जी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य फेसबुक से जुड़े हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि चार भाई और एक बहन हमारे परिवार में हम लोग हैं, मगर भाई लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते। हमेशा बहन होने के कारण उनको अच्छा बिहेवियर नहीं मिलता बहन के साथ, तो ऐसा क्यों होता है दीदी, कैसे हम इसे डील करें, पूछते हैं वो।
सूर्य वो थोड़ा आश्चर्य लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास अभी देखो रक्षाबंधन अभी त्योहार कल ही गया ना, एक बहन आई थी, वो सात भाई की एक बहन है, परंतु कहती है कि सात भाई की एक बहन पर रक्षाबंधन पर हूं मैं बहुत बेचैन। क्यों? मैंने पूछा क्यों बेचैन है, तो कहा कि सातों ही भाई मेरे हैं ना सभी आउट एंड पे हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है कोई कहाँ, कोई मुझे बुलाता नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं है, आपको कोई तकलीफ कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भगवान को जब प्रार्थना करते थे मंदिर में जाकर के तो कहते थे कि तुम्हें माताश पिताश बंधुच सका, भाई हमारा भगवान भी भाई भी है। तो आप ऐसा अपने आपके मन में कहीं पर भी ये नहीं सोचो कि कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई बात नहीं है। आज जो आपको खराब कह रहे हैं, कल ऐसा समय आएगा जब आपको अच्छा भी वही बोलने वाले हैं। आप उनके साथ अच्छे चलते चलो, आप अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ो। आप बड़े अभी ये समझो कि इस समय को राखियां नहीं भी मिली, भाई को नहीं भी बांधी होगी, परंतु आगे कभी भी समय आए तो आप उनको और भी अच्छे जैसे राखी बांधो, मुख मीठा कराओ, घर में बुलाओ, घर में खिलाओ पिलाओ, अच्छा अच्छा बना करके। क्या है उसमें, बड़ी बात क्या है उसमें, घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। और भी उनको ज्यादा आपको आप रिस्पेक्ट दो नहीं देते दे आप दो, कोई बात नहीं। कोई हमको नमस्कार नहीं करता है तो हमको उनको हाथ जोड़ने का क्या है, परंतु आप तो अभी लकी हो, चार भाई है आपके, तो चारों भाई चारों दिशाओं को आपका संभाल रहे, आपकी रक्षा करने वाले हैं। आप हमेशा यही सोचो कि हमको एक देन मिली है, गिफ्ट मिली है भाइयों की, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों, बरसों के बाद भी आपका तो अच्छा ही होने वाला है। आप अच्छा ही सोचो उसके लिए। यही चार भाई एक दिन आपको कहेंगे कि वाह मेरी बहन वाह। बहन देखना हो तो ये सूर्य को देखो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा सब कुछ ही। आपको कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना, पॉजिटिव में रहो। आपके सभी भाई अच्छे हैं और आपके शुभ सोचने से उसमें बहुत सारी अच्छाइयां आप ही आती जाएगी आती जाएगी। उसके लिए मैं इतना जरूर कहेंगी कि आप भी थोड़ा मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप पे वो पॉजिटिव पावर आएगी, पॉजिटिव की शक्ति आएगी। तो वर्तमान समय ये जरूरत है, अगर समझो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो उसका भी कुछ कारण होगा। आजकल कोई भी कारण के बिना तो कोई कार्य होता नहीं है, क्योंकि सभी को आजकल है ना थोड़ा कुछ भौतिक पदार्थों के भी ज्यादा अंदर में सोच ज्यादा चलती है और अपेक्षा भी ज्यादा चलती है। सभी को यही चाहिए, वस्तुएं ज्यादा प्यारी है, व्यक्ति कम प्यारा है। भौतिक वस्तु चाहिए, वैभव चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और सभी को फैशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आजकल सभी बहिर्मुखता में बहुत कुछ बातें आती है, अगर वो थोड़ी भी कम होती तो समझते हैं कि देखो ये कितना अच्छा कमाती है, ये कितना अच्छा घर चलाती है, ये कितना अच्छा ये संभाल के बैठी है माँ बाप को, ये कितना ये कर रही है। तो औरों का ही ज्यादा देखते, तो मेरा तो ख्याल है कि औरों को न देख करके पहले स्वतः के ऊपर जरा अटेंशन देना चाहिए। और जब भी बहुत टेंशन आता है तो टेंशन के आगे जो ए लगा दो तो क्या हो जाएगा, अटेंशन दो, हर बात के ऊपर अटेंशन दो, तो नाराज भी होंगे वो ठीक हो जाएंगे। बाकी तो देखो आजकल क्या है, एक बात का मुझे ये भी ख्याल आता है कि अगर भाई सभी शादीशुदा हैं तो उनके जो घर में जो आते हैं ना हमारी भाभियां जिसको कहते हैं हम, वो हर एक का विचारधारा अलग अलग होती है। आजकल किसी को कोई चाहिए नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं चाहती है। मैंने देखा है संसार के अंदर भी कई भाई बहन हमारे केंद्र में आते हैं, हमको मिलते, हमने देखा है, वो कहते हमको निर्णय चाहिए ही नहीं, बस वो बात ये एक बात। क्यों कुछ मांगेगी तो कुछ देना पड़ेगा, तो रक्षा बांधेगी तो हमको कुछ देना पड़ेगा, तो हमको व्यवहार रखना पड़ेगा, तो इसलिए भी डरते हैं आजकल। परंतु हमने देखा है कि हमको कुछ मांगना ही नहीं है, ना मांगने से मरना भला, क्या मांग के क्या करेंगे, जिसको देना हो तो आप ही देंगे। परंतु वो जो भाभियां आती है तो सभी अलग अलग परिवार की होती है, अलग अलग घर की होती है, अलग अलग स्वभाव की होती है, अलग अलग संस्कारों वाली होती है, तो हमको इनका इतना मन में वो भाव नहीं लेने का, जाने दो खुश रहे, भाई कहे भाई तो है ना हमारा, वो सदा अजर अमर रहे, खुश रहे, और कम से कम चलो उनकी परिवार को तो वो संभाल रहे तो बोले खुश रहे ना। अगर वो परिवार नहीं संभाले उनको, उनकी हमारी भाभियों भाइयों को नहीं संभाले, तो हमको तो भाइयों को भी संभालना पड़ता है, ऐसा भी समय आ जाता है। पर हमें उन कोई बात में नाराज नहीं होने का है, हमें हमेशा खुश रहने का है, क्योंकि ये भी हमारी एक प्रभु की देन है, खुशी में रहना ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, प्रभु की उपहार मिला है हमको कि जिंदगी जियो तो खुशी से जियो, नाराजगी से क्यों जीने का। अरे आज ये जन्म में हमारे भाई बने, पिछले जन्म में भाभियां भाई हमारे कौन होंगे, हम उसके कौन होंगे, हो सकता है कि हमने कभी उनको मारा होगा पीटा होगा, इस जन्म में वो हमको मार रहे पीट रहे हैं। ये तो भाभी भाभियों की तो बात छोड़ो, आजकल तो माँ बाप की भी हालत खराब है। हमारे पास भी कई आते हैं, चार भाई है, चारों ही भाई माँ बाप को बांट लिया है, हर एक के घर में वो माँ बाप जो है ना वो तीन तीन मास रहते हैं, वो माँ बाप आएगा आकर हमारा क्या। मैंने कहा कि ये भी देखो समय, इसको ही कहते हैं कि अभी का कलयुग का समय बड़ा प्रभाव डाल रहा है सभी के ऊपर, और ये प्रभाव डालने वाली को माया कहते हैं, रावण कहते हैं, कहते हैं इनको विकार कहते हैं, ये क्रोध है, लोभ है, मोह है, और सबसे बड़े से बड़ा है एकदम ही बॉडी कॉन्शियस। इंसान में आजकल बॉडी कॉन्शियस बहुत आ गया है, रूप रंग यौवन और पैसा। हम तो ये कहती है कि पैसों के पीछे भी इतना क्यों रहना चाहिए, क्या है एक्चुअली। जो थोड़ा भी मेडिटेशन करता है तो उनको ये पेट भरा रहता है, कह रही इतना पेट के पेट को चाहिए कितना मुझे बताओ, कितना चाहिए, दो रोटी चाहिए ना। और हम अच्छे हैं, सच्चे दिल के हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ आपसे रोटी देने के लिए आपको, पर आप पेट के लिए पेटी के लिए इतना रोते क्यों है जगत में, मुझे समझ में नहीं आता है। सभी लोग उसके पीछे ही लगे हुए रात देख, पेटी भरनी पेट भरने का। मैं कभी कभी अकेले बैठ के सोचती हूँ कि कितने टन के टन वेगन के वेगन कितने जन्म में इंसान ने खा लिया है, फिर भी पेट तो खाली है। अभी उनको सोचना चाहिए कि अभी बस करो, अगर कल भी मौत, अभी कोरोना का तो ऐसी वायरस है, एक दो दिन ही हॉस्पिटल में रहता है, तीसरे दिन तो वो चला जाता है। हमारे पास एक बेचारा भाई आया था, तो उसके हॉस्पिटल में गया पिताजी को मिलने के लिए, बोले मुझे पिताजी से मिलने का है, तो वहां जॉब मिला कि तेरे पिताजी को दो दिन पहले हमने जला भी दिया, खाक भी हो गई, तो खाक भी कहां गई पता नहीं, वो तो मर गए। वो दो दिन के बाद उसके पिताजी घर में आते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में। मैं तो कहती हूँ दो आंखें तो भगवान ने हमको दिया है, खोली है, अभी तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत है। और दुनिया भयंकर हो गई है, अभी तो और भी भयंकरता आने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि दुनिया वालों का जो ये हालचाल और व्यवहार जो है ना वो बहुत ही कढ़ंगा है, बेढंगा है
जी,
अच्छा नहीं है। कभी प्रदीप जी कहता था, उसे गीत बनाया था कि दुनिया हो गई है लोफंगी सभी, अभी दुनिया में सभी को माया ही विकार ही विकार दिखाई देता है
जी।
भगवान भगवान कहते हुए भगवान तो कहाँ बैठा है, कोई राम के पीछे लगा है, कोई कृष्ण के पीछे लगा है, चलो भावना है बड़े करे, परंतु सच्चा तो यही है कि हमारे दिल के अंदर में वो सच्ची भावना होनी चाहिए, वो नहीं है
जी। दीदी आप ये जो बात अभी कह रहे हैं,
कहते आएंगे कि काम हे भगवान मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, तू मुझे माफ करना माफ करना, और फिर कहेगा कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, फिर घर में आकर के कहता है सब कुछ है मेरा, क्या लागे तेरा, ऐसे तो लोग हो गए। जब वो जो लोग प्रभु को ठग रहे हैं वो लोगों को क्या नहीं ठगेंगे, आजकल तो लुच्चाई ठगाई ठगी बेईमानी बेरोजगारी इसमें तो आई है, सभी बहुत बेईमानी हो गई है, झूठ बहुत हो गया है, पाखंड बहुत हो गया है, बाहर का शो बहुत हो गया है
जी।
अब ये सभी खत्म होने वाला है
जी। दीदी आप ये जो बात अभी कह रहे थे, इस बात से बहुत सारे हमारे दोस्त राजी होंगे और वो देखेंगे कि समय बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है, मुश्किल सा समय है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, और इस समय में लोग अध्यात्म के प्रति भी झुकाव आया है, लोग मेडिटेशन और योगा भी सीखने लगे हैं, तो अच्छी चीजों के प्रति रुझान बढ़ने लगा, लोग कुछ ना कुछ समझ कर अपनी सोच को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अपने अंदर झांक कर देखो, ये बदलता समय है, तो इस समय के हिसाब से हमें भी बहुत कुछ सीखना है, और वही ये चीज करा भी रहा है। अगला प्रश्न हमारे एक और दोस्त पूछते हैं दीदी, संतोष नाम है इनका, वो कहते हैं कि हम अच्छाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन हमारी अच्छाई को लोग अगर ढोंग कहते हैं तो इस बात से हम अपसेट हो जाते हैं, इसको कैसे डील करना चाहिए, ऐसा संतोष पूछते हैं। हम तो अच्छा कर रहे हैं बट हमारी अच्छाई को अगर लोग ढोंग समझे तो हम कैसे इस चीज को डील करें, संतोष जी पूछते हैं।
अच्छा संतोष जी को मैं यही कहती हूँ, भले वो ढोंग समझे, हमारा दिल तो गवाही देता है, मेरे मन में किसके प्रति क्या चल रहा है मैं तो समझ सकती हूँ ना, भले दूसरा कोई मुझे समझे या नहीं समझे, मैं तो अपने आप को समझ सकती हूँ, मुझे कम से कम अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए ना, आत्मविश्वास होना चाहिए ना, भले औरों के ऊपर फैथ रखो या नहीं रखो, क्योंकि खुद के ऊपर तो खुद का विश्वास होना चाहिए ना, इसलिए कोई उनको मानते नहीं है, ढोंग इसलिए समझते कि वो ढोंग का शब्द इनके ऊपर वार कर रहा है, करी करी मुझे लोग ढोंगी कह रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं, अरे आज आपको ढोंगी कह रहे हैं, आप अच्छे सच्चे होंगे कल आपको कोई योगी भी कहेंगे, कल निरोगी भी कहेंगे, परंतु आप सचमुच ढोंगी होंगे तो वो आपका जो वाइब्रेशन है ना, जैसे कोरोना का कैसे वायरस जाता है ना, वैसे मनुष्य के मन का भी वाइब्रेशन जाता है सभी जगह, हमें वाइब्रेशन शुद्ध फैलाने का है, पवित्र फैलाने का है, भले ढोंगी गए कोई बात नहीं है, थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा सहन करने में क्या जाता है, आज आपको ढोंगी करने कहने वाले, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने जो बड़े बड़े लोग हो गए संत क्या महात्माएं क्या अच्छे अच्छे लोग, उनको किसी ने भी अच्छा नहीं कहा है, सभी ने उनको बदनामी किया है और वो बदनामी में ही आगे आए हैं। आज मैं कहती हूँ मीरा को किसने अच्छा कहा, आज नारद का तो अभी तक भी फोन गाते हैं सभी, किसने अच्छा कहा है, सूरदास को किसने अच्छा कहा, संत तुकाराम को किसने अच्छा किया, और महाराष्ट्र बॉम्बे में भी कितने संत हो गए हैं, किसको अच्छा कहा है, जो भी अच्छे मार्ग पर जाते हैं उनके बदनामी तो होने वाली है, वो समझ करके ही चलने का, परंतु हम सच्ची है हमारे दिल पे हाथ रखने का, खुद के ऊपर फैथ रखने का कि मेरे में कोई कमी नहीं है, भले वो बोले, आज हमारे मोदी साहब के पीछे भी कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, आज हमने देखा है कि हमारे देखो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे उसके पीछे भी कितने बोलते थे, वो सच थे, तो कहावत है कि सच तो होगा, सच की नाव डोलेगी डोलेगी वो डूबेगी नहीं, भले मुझे कोई ढोंगी गए कोई बात नहीं, ऐसे में एक ढोंगी बन गया
नहीं।
किसी के कहने पर मुझे क्यों चलना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई भले कुछ भी कहे, कोई मन मत ये करे, कोई परमत करे, कोई मनुष्य मत कहे, मुझे अपने लिए भी सोचना चाहिए कि मैं तो सच चल रहा हूँ ना, जो बड़े बड़े होकर के गए हैं ना, एक ही शब्द तो कल बड़े हो गए हैं, वही हमारा जो अभी का आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर वाला अपने पैरों पर खड़ा रहता है। कई इनको कहते हैं कि आप जो है ना वो क्या सोच रहे हो, आप रोड पर खड़े हो करोड़ रुपए की बात कर रहे हो। उनको बोलो हाँ करोड़ नहीं, मैं अरबों खरबों की बात कर रहा हूँ। बोलो तो कोई ढोंगी कहने से कोई मैं ढोंगी नहीं बन गया हूँ, तो उसको बोलने दो जो वो तो आज ऐसे तो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। कई बहने आती है हमारे पास, कहती हमको हमारे घर वाले कहते आप नालायक हो, तो क्या मैं नालायक हो गई? तो हमने कहा कि नहीं आप नालायक नहीं, आप तो बहुत लायक आती हूँ, क्योंकि वो बरोबर कहा आपको, अच्छी बात बोल, सच्ची बात बोल, सच्चा बोला कि आप उन लोगों के लायक नहीं थे। पर जो बोलने वाले हैं वो ढोंगी जो होते हैं खुद ही ढोंगी औरों को कहते हैं, जो खुद कमाते नहीं होंगे वो औरों को कभी भी साहस नहीं देंगे कमाने का, कहेंगे ये क्या कमाना है, क्या नौकरी भी जाना है, क्या बड़ा बिल्डर बनना है, क्या यह फलाना बनना ढिमका बनना क्या जरूरत है, चलो हम जुआ खेलते हैं, सावन मास है ना, जुए में बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको, तो इनके कहने पर चलना चाहिए। हमें सीधे रास्ते पर जाना है, सीधे रास्ते पर आने का है, हमें गलत मार्ग नहीं अपनाने का है। हमारी भारतीय संस्कृति में इनकार है, ऐसी बातों को सत्कार दिया ही नहीं है किसी ने भी, सम्मान दिया ही नहीं है। तो कोई गलत करे तो हमें गलत नहीं करने का है, हमें अच्छे मार्ग पर ही जाने का है। तो इसलिए मैं तो भाई को यही कहती हूँ कि भले कोई आपको ढोंगी बोले, आप ढोंगी नहीं हो, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर फुल फेथ रखो, तभी आगे बढ़ सकेंगे। कि मैं जो कर सिर्फ आपके मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए
जी,
आपके मन में बेईमानी नहीं होनी चाहिए
जी,
चलो पैसा नहीं मिला तो किसकी जेब काट लो। एक भाई ने किसी की जेब काटा
जी,
तो जेब में तो कुछ मिला ही नहीं, वापस वो भाई उस भाई के पास गया तो जेब में कुछ नहीं रखता करके दो चार गालियां दे दिया। ऐसे भी लोग है ना आजकल, और क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थिति में सभी डूबे हुए, एक नहीं है, सिर्फ बारिश में डूबे हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि बरसात में डूब गए, असम में इधर डूब गए, बिहार में इधर डूब गए, परंतु देखा जाए दुख में और शोक में रोग में महामारी की बीमारी में सभी डूबे हुए हैं, एक व्यक्ति नहीं है, हम सभी एक परिवार के बच्चे हैं, सभी एक परिवार के भाती है, सभी के ऊपर व्याधि चल रही है, कोई हंसता है कोई रोता है, रोता क्यों है, जो रोता है वो खोता है, जो रोता है वो सोता है, हंसता है वो आगे बढ़ता है। तो हमारे चेहरे की मुस्कान कभी जानी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। आज का चेहरे में मुस्कान लाने के लिए खास वो लाफिंग क्लब खोला है, और कई के फिर अपने आप को हंसाने के लिए ऐसा करते हैं, इससे क्या होगा, अंदर से हंसी आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए
जी। तो बहुत ही अच्छी बात है,
देना चाहिए अपने आप को, अंदर से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं ढोंगी बोंगी नहीं हूँ, मैं तो सच्चा योगी हूँ, ढोंगी समझे
जी। बहुत ही अच्छी बात है दीदी, आपने ये जो बात अभी अभी कही मैं समझता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या कहते हैं ये आपको नहीं सोचना है, अगर आप अंदर से साफ हैं तो फिर सारी चीजें ठीक है, आप मुस्कुराते रहें, समस्या जो भी आए अगर हम मुस्कुरा के उसका सामना करते हैं तो हम सभी साथ में हैं, सारी दुनिया साथ में है, सब लोग मिलकर चीजें कर रहे हैं, ये याद रखते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दीदी लगभग हम 50 मिनट पे आ गए हैं और मैं समझता हूँ मैं आज के कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सूजन जी पूछते हैं हमारे साथ, वो बोलते हैं कि मेरा अतीत जो है, मेरे पिछले दिनों में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मैं बहुत सैड महसूस करती हूँ, मैं बहुत उदास महसूस करती हूँ मेरे पुरानी गलतियों की वजह से, और मेरी पुरानी गलतियां मुझे बार बार याद आती रहती हैं और इसकी वजह से मुझे परेशानी होती है, तो मैं कैसे इस चीज को डील करूं, क्या मुझे करना चाहिए, इन पुरानी यादों को मैं कैसे सही कर सकती हूँ, वो सुजन जी पूछते हैं, सुजन जोशन।
कोई बात नहीं है, उसके लिए एक ही उपाय है, सच्चे दिल से प्रभु के पास माफी मांगने का। जो गलतियां अभी हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो गलतियां माफ कर देता है भगवान। पर वही गलती करते रहो और रोज कहो भगवान को कि भगवान आई वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, तो भगवान कहता है वेरी सॉरी से कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने आप को सुधारो। नहीं जो हो गया सो गया, चलो हो गया, इतना भी महसूस किया नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये पुण्य है उनका, सुजन बहन का, जो इतना तो महसूस तो हुआ ना कि मैंने गलतियां किया है, अभी आगे नहीं करनी चाहिए। तो आगे नहीं करेंगे तो जो गलतियां किया हुआ है वो सभी साफ भी हो जाएगी तो माफ भी हो जाएगी। मैं तो इतना ही कहती हूँ इनको, इतना ऐसा महसूस हुआ ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब हमारी बहन का सचमुच ही बहुत ही अच्छी दिल है, साफ दिल है। सुजन बहन का जो हो गया सो गया, अभी घड़ी घड़ी उस भूलों को सोचने से और डबल भूले होती है। अभी वो सुजन बहन अब सोचो नहीं कि हमारे से गलती हो गई है, जो हो गया सो माफ हो गया, आप सच्चे जैसे खुदा के आगे प्रभु के आगे रख दो कि दोबारा अभी ऐसी गलतियां मैं नहीं करूंगी, ऐसा आप दृढ़ संकल्प कर लो मन में कि आज से मैं कभी नहीं करेगी, तो आपके सभी भूलें माफ हो जाएगी और दिल साफ भी हो जाएगा और आगे से कोई ऐसी गलती आपसे होगी भी नहीं कभी, ये हमारी गारंटी है। और आप अगर यही सोचती रहेंगे तो सोचने सोचने में जो गलती नहीं होती होगी ना वो भी डबल गलती हो जाएगी, और आपको जो एहसास हुआ है ना वही आप समझो कि मेरे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी मेहरबानी है ना, कुर्बानी है मेरे ऊपर, आप इसको बहुत अच्छा सोचो। अभी आगे के लिए गलती नहीं करूंगी वो आप आज से दृढ़ संकल्प कर लो मन में, विचार दृढ़ कर लो, और आज की आज ही भगवान के पास खुदा के पास बैठ करके माफी मांग लो लिख करके, मेरे से ये गलती हो गई है तो आइंदा मैं कभी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, बस और कुछ नहीं करना है सुजन में।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जो आपने जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। जैसे आप ये उत्तर दे रहे थे इससे मिलता जुलता ही एक और प्रश्न पूछ रहे थे जयंत सिंह जी, और वो भी यही बात कह रहे थे कि जो पुरानी बातें हैं वो बार बार उनको याद आती है, बट आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दिया। अब मैं यही चाहता हूं कि अब आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपने जो इतने अच्छे तरीके से सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया, सभी लोगों ने इस चीज को एंजॉय किया, आपने सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाई, हम सब आपको देख के बहुत खुश भी हुए, आपके उत्तरों से भी खुश हुए। आज जो दोस्तों ने सवाल पूछे हैं उन सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सवाल हमारे साथ किए,
धन्यवाद देती, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सभी ने जो जरूरी था वर्तमान समय के हिसाब से।
जी दीदी, हमारे दोस्तों की तरफ से हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीदी।
अभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
जी दीदी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले 5 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराएं, हम सभी आपके साथ ये आखिरी 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहेंगे दीदी, मेडिटेशन के लिए।
हम सभी जो भी आज जुड़े हैं सभी रिलैक्स होकर के बैठ जाओ और ओम शांति। उस समय के लिए आप अपने विचारों को एकाग्र कीजिए, और यही सोचिए कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ पिता प्रभु के संतान हूं, मैं ये देह नहीं हूं, देह नाशवंत है, देह मिट्टी की काया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाली है, मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मुझे परमात्मा पिता ने इस सृष्टि मंच पर भेजा है अपना पार्ट प्ले करने के लिए। मुझे जो भी समाध मिला है भगवान के घर से हमारे कर्मों के अनुसार, मैं उसको इतना अच्छी तरह से प्ले करूं जिस प्रकार कोई नाटक के अंदर अच्छा पार्ट प्ले करता है तो उसके लिए वंस मोर होता है। प्रभु पिता मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं भी ऐसा पार्ट प्ले करूं जो वंस मोर। अपने आप को एक मैं चैतन्य शक्ति आत्मा समझती हूँ। आत्मा समझ करके मैं इंद्रियों के द्वारा अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं समर्थ पिता प्रभु की बच्ची हूँ, संतान हूँ, समर्थ प्रभु की संतान हूँ। इस दुनिया की कोई भी चिंता, भय, डर, कोई भी परिस्थिति मेरे ऊपर वार नहीं कर सकती है। मैं समर्थ शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, खुशी स्वरूप हूँ। ओम शांति।